ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. அம்பாபா கி விசேஷ புருஷார்த்தி பச்சி அப்படி புருஷார்த்தே துவாரா ஊச்சே சே ஊச்சி பிராரப்த பனா ரே ஆஜ காயோ விஷய முயா கை பார் சலத்தே சலத்தே சாத்தே பகத் சி ருக்காவட்டே ஆத்தி ஹ மெஹனத் அனுபவத்தை சகஜ யோகி ஜீவன் மெஹனத் வாலி அனுபவ லகத்தி ஹை ஐசேம் மெஹனத் முக்த பனே கியோகி பாபா கோ பச்சோ கி மெஹனத் அச்சி நீ லகத்தி கே பச்சோ ஆப் சபே பக்தி மார்க் மெஹனத் கி ஹை கித்தனை மந்திரோ மே கித்தனை தீர்த்தோ பர தர் தர் ஜாத்தே ஹு ரத்தே ஹு ஆப் சப பகவான் கோ டூடனை கி உன்சே பிராப்தி கரனை கி பகத் சி மெஹனத் கி மேரே பச்சே பண்ணே கே பாத் அது கோய் மெஹனத் கர்த்தா ஹை தோ பாபா கோ படா ஓர் பகத் பியார் சே கேத்தா ஹை பச்சே பாக்கி பண் கர்க்கே மெஹனத் க்யோ கர்த்தே ஹோ சஹஜ யோகி ஜீவன் சஹஜ புருஷார்த்தி ஜீவன் ஹோனி சாஹியே ஹம்னே பாபா கே இஸ் பேஹத் கர் மே கை தாதியோ கோ ஏகம் பகத் சஹஜ புருஷார்த்தி சஹஜ யோகி ஜீவனை தேக்கா ஹை கோய் கோய் தாதியோ நே மெஹனத் கி ஹை விசேஷ ஹம் பாபா கே தத்தே ஆதரணீய தாதி குல்ஜார் ஜி கோ புருஷார்த்தி கபி பி உன்கோ புருஷார்த்த கர்த்தே ஹுயே கோய் மெஹனத் கர்த்தே ஹுயே நஹி தேக்கா एक नेचुरल जैसे बचपन से ही वरदान मिला हो एकदम प्योर शुद्ध ऐसी निश्चल आत्मा जिसके अंदर कोई भी प्रकार की इधर उधर की व्यर्थ बातें न हो। एक बार बाबा ने इस रथ की विशेषता सुनाई थी कि बाबा ने इस रथ को क्यों अपना बनाया, क्योंकि बच्चे ने दो बातों पर बहुत ध्यान दिया शुरू से ही। एक, अपने संकल्प की एनर्जी को जमा किया, कोई भी बात आई, क्योंकि दादी दिल्ली जोन की इंचार्ज भी रही, कई विंग की अध्यक्षा भी रही, बहुत सी सेवाओं की जवाबदारी भी संभाली, ट्रांस मैसेज के साथ साथ देश विदेश में बहुत से अथक बन करके सेवाएं की, लेकिन सब कुछ करते हुए भी दादी कभी भी हलचल में नहीं आई। कोई भी बात अगर उनके सामने आई भी तो बहुत सहजता सरलता से उसका समाधान किया, क्यों क्या कैसे के प्रश्नों में उलझन में नहीं आई। तो बाबा ने कहा कि बच्ची ने जो अपने संकल्प की एनर्जी को बचाया, ब्रेन की एनर्जी को बचाया है, वो बाबा के काम में आ गई। आप सब जानते हो दादी जी के द्वारा जो हम सबकी इतनी पालना हुई है अव्यक्त रूप में, कभी भी ये महसूसता नहीं होने पाई कि अभी साकार में बाबा नहीं है। दादी ने ऐसी स्थिति अपनी बनाई जो दादी के द्वारा हम सबको बाबा की भासना पालना मिलती रही। बाबा आए वो अलग पार्ट रहा, लेकिन वैसे भी अगर कोई उनसे मिलता था, उनके समीप जाता था, तो ये महसूस कर लेता था कि जैसे इस रथ में बाबा अभी भी हैं। उनकी दृष्टि, उनकी मुस्कुराहट से, उनके दो मधुर बोल से लोगों ने बड़े अच्छे बाबा के अनुभव किए हैं। और उसका एक मूल कारण था, आप सब जानते हैं, जिस प्रकार के हमारे संकल्प हैं, जिस प्रकार की हमारी भावनाएं हैं, वृत्तियां हैं, उसी प्रकार का एक सुंदर आभा मंडल बनता है। कुछ दिन पहले मैं बॉम्बे दादी से मिलने गया था, जिस स्थान पर वो रह रही हैं, सेंटर पर ही हैं। ऐसे लगता है जैसे ये स्थान एक बहुत शक्तिशाली लाइट हाउस है। इतनी साइलेंस है, इतने अच्छे वाइब्रेशन है, कोई भी हलचल नहीं। ऐसे महसूस हुआ कि जैसे बाबा ने इस आत्मा को विशेष हम बच्चों की रक्षा के लिए, हमारी पालना के लिए इस स्थान पर, एक स्थान पर बिठा दिया है। उनके इतने पवित्र, इतने शुद्ध वाइब्रेशन हर आत्मा महसूस करती है। डॉक्टर्स ने जो इतनी प्यार से दादी की सेवा की, वो कहते हैं दादी बस बैठी रहे और कुछ नहीं चाहिए। दादी के बैठने से, इनके वाइब्रेशन से हमको शक्ति मिलती है। जबकि डॉक्टर्स दूसरे धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन दादी को देखते ही वो कहते हैं ये तो हमारी पूर्वज लगती हैं। पैर छूते हैं, फिर उनसे बात करते हैं और उनसे बहुत कुछ प्रेरणाएं लेकर के जाते हैं। तो दादी का जो आभा मंडल रहा, जो सहज नेचुरल पुरुषार्थ रहा है, वो बिल्कुल व्यर्थ से मुक्त। कोई भी प्रकार के प्रश्नों में कभी भी न उलझी है, न किसी को उलझाया है। इतनी सरल पुरुषार्थी जीवन उनको मैंने प्रैक्टिकल देखा। आप सबको बताता हूं, हमारी दादी प्रकाशमणि जी हम सबको कहती थी, कुछ भाइयों को, क्योंकि दादी जी कहीं संगठन में बीच में नहीं जा सकती, बाबा का रथ है, नहीं कहता शिव ब्रह्मा बाबा कई बार कहता है साकार मुरलियों में कि मेरे साथ पूछ है, शिव बाबा है, मैं इनको कहां लेके जाऊं, इस दुनिया के वातावरण के अंदर शिव बाबा को मैं कैसे लेकर के जाऊं। तो दादी जी का भी यही रहा, कहीं पर भी किसी के बीच में जाना माना उनको उसी नजर से लोग देखते हैं कि इनमें भगवान आते हैं, इनमें प्रवेशता होती है। तो दादी की बहुत सीक्रेट, बहुत अलग से रही। तो दादी हम लोगों को, बड़ी दादी प्रकाशमय दादी कहती थी, गुलजार दादी को ले जाओ, कहीं पिकनिक करा के आओ, किसी स्थान पर, ऐसे स्थान पर जाओ जहां पर कोई भी ना हो, एकांत में ले जाओ। तो हम लोग कभी कोई नदी के किनारे, कोई भी पहाड़ी पर, कोई अलग स्थान पर ले जाते, वहां पर बनाते भोजन, उनके साथ पिकनिक करते, सब कुछ होते हुए भी कितनी भी बातें हम लोग उनके आगे करें, लेकिन दादी कभी भी केवल मुस्कुराने के सिवाय जवाब नहीं देती। मुस्कुराती जरूर थी, हाँ ना में ऐसे उत्तर भी देती थी, लेकिन उन्होंने अपनी वाणी की शक्ति और संकल्प की शक्ति को बहुत बचाया, और बचाने के कारण हम सबकी इतनी सुंदर पालना बाबा के द्वारा हुई। 12 घंटा, 14 घंटा इस रथ के द्वारा कंटिन्यू बैठ करके बाबा हम बच्चों से मिले हैं। मैं तो 71 से जब मधुबन में आया हूं, 72 में यहां रहना शुरू किया। टाइप सीखने की इच्छा तो मैंने बाद में जाहिर की कि मुझे टाइप सिखा दो, मुझे सिंधी सिखा दो, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से था, मेरी हिंदी अच्छी थी, पढ़ा स्कूल से ही आया था। तो दीदी दादी ने कहा कि बाबा रात भर बैठते हैं, यीशु दादी मुरली नोट्स लेती हैं, लेकिन केवल मुरली की नोट्स लेती हैं, बाबा बाद में पार्टियों से क्या बोलते हैं वो नहीं लिखती हैं, पूरा टाइम नहीं बैठ पाती हैं, आप बैठो बाबा के पास। और मैं तो 15-16 साल की उम्र में आया था, स्कूल की लाइफ थी। हमने कहा ठीक है दादी, जो सेवा मिलेगी हम करेंगे, चाहे बाबा हिस्ट्री विहार में आए, चाहे कमरे में आए, कहीं भी आए। पहले मुरली पूरी हुई, यीशु दादी वहां के नोट्स लेके गई, उसके बाद मैं पूरी पूरी रात बाबा के साथ बाजू में बैठ करके जो कुछ बाबा ने बोला एक एक अक्षर लिखा। उस समय टेप रिकॉर्ड हमारे पास नहीं थी जो मैं रिकॉर्डिंग करूं या कोई भी करे। बाबा के सामने 50-25-30 ऐसे बच्चे होते थे, कोई बड़ी सभा तो होती नहीं थी, लेकिन माइक की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि बाबा की आवाज तो आप जानते हो, अव्यक्ति आवाज, तो माइक के पास मैं समीप में बैठ करके बाबा के महावाक्य नोट करता था। इतना बाबा ने इस रथ के द्वारा हम बच्चों की पालना की, एक एक बच्चे को मिलना, 15 मिनट 20 मिनट उसके ध्रुवरियान करना, उसकी विशेषताएं सुनाना, उसकी उसको वरदान देना, कितनी दुआएं दादी को मिली होंगी। मतलब उन दुआओं के कारण दादी को कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ी। एकदम नेचुरल योगी जीवन था। योग लगाते हुए चलो नियम अनुसार हमारे दिनचर्या के प्रमाण साथ हमको योग करना है, अमृत वेले करना है, वो तो करते हैं। लेकिन स्पेशल कभी देखा हो कि योग में बैठी है, नेचुरल कभी भी चले जाओ वही योगी जीवन। हम जाते थे तो देखते दादी तो ही यही यहाँ जैसे गुम है, बाबा के पास ही है। क्योंकि जब दादी कभी बाबा का पार्ट अलग चलता था, लेकिन बाबा के संदेश बीच बीच में आते थे, तो दादी जब संदेश लेके आती थी तो लिखती थी कागज पर। तो मेरे को बार बार नीलू बन कहती थी दादी एक बार नहीं लिखते, फिर फेयर करती है दो बार तीन बार, तो तुम आके दादी के बैठो, दादी तुमको बोल देगी तुम लिख लो, तो बार क्यों लिखें ये। तो मैं ऐसे संदेश नोट करने की लगता था, दादी एक बार नोट ले लिया कागज पर फिर मुझे मैं हिंदी में लिख लेता था। और कभी कभी थी जाओ मैंने जो लिखा है रफ मैं पढ़ लेता था दादी की राइटिंग सिंधी, वो ले आता था फिर पढ़ करके टाइप करता था। लेकिन भी संकल्प अगर शांत नहीं हो, शुद्ध नहीं हो, किसी के प्रति भी कोई दूसरे संकल्प अगर चल रहे हो, तो बाबा की टचिंग, वतन का संदेश यथार्थ मिले वो नहीं हो सकता। जो चाहिए बाबा को जो कहना है, तो मैंने देखा दादी ने अपनी बुद्धि को बड़ा शांत धैर्यवत बिल्कुल नेट संकल्प रखा और बहुत सहज रीति से सत्ते हुए इतनी बड़ी जीवन में कभी भी उनको जोश में जोर से आवेश में आकर के बोलते हुए नहीं सुना, बहुत सरलता से। तो पुरुषार्थी जीवन के लिए इस टॉपिक को मैं कहूं कि अगर हम सबको बहुत सहज योगी जीवन बनानी है, हमारी जीवन योगी है, हम योग लगाने वाले नहीं है। अगर 4 घंटा लगा रहे हैं तो कई बार बाबा एक मुरली लाते हैं कभी कि अगर 2 घंटे तुम मुझे याद करते हो तो बाकी किसको याद करते हो। अगर कोई लिखता है चार्ट के अंदर मैंने 2 घंटा योग किया 4 घंटा योग किया, तो बाबा ये प्रश्न पूछ देते बाकी किसको करते हो। निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी बनने की अव्यक्त मूल्यां चली हैं। साकार में तो बाबा अपनी दिनचर्या को 3 भागों में बांट लो, 8 घंटे की दिनचर्या बनाओ। 8 घंटे शरीर के लिए, को स्वस्थ रखना है तो इसको नींद चाहिए, इसको भोजन चाहिए, स्नान करना है, तैयार होना है, 8 घंटा उसके लिए है। और शरीर निर्वाह के लिए बिजनेस है, नौकरी है, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो 8 घंटा उसके लिए, और 8 घंटे बाबा के लिए दो, योग करो, बाकी सेवाएं करो, बाबा के लिए निकालो 8 घंटा। ऐसे 24 घंटे को बने हम सबके लिए ये एक नियम के रीति साकार मुरली में बताया। अव्यक्त बाबा ने इस बात को और रिफाइन कि बच्चे अभी चाहे आप शरीर निर्वाह का कार्य कर रहे हो, चाहे आप सिर कर रहे हो, आपकी योग की स्थिति नींद में भी होनी चाहिए। निद्रा योगी बनो, योग में भी वो स्थिति रहे, नींद में भी योग की स्थिति रहे, कर्म में भी वो स्थिति रहे, इसके लिए आप टेंशन दो। इसके लिए बाबा ने अलग अलग विधियां बताई। सहज पुरुषार्थी जीवन के लिए मुरली होते हैं रोज, अच्छी कोई ऐसी बातें सुनकर करते हैं, चिंतन करते हैं, बुद्धि को ज्ञान स्वरूप आते हैं। अगर ज्ञान स्वरूप बुद्धि है तो योग लगाना सहज है, वो आ रहे फाउंडेशन है। आज बाबा ने कहा कई बच्चे कहते मेरा योग नहीं लगता, योग नहीं लगता है बाबा ने तो कहा योग शब्द उड़ा दो। लेकिन योग न लगने का याद रहने का कारण क्या है कि हम इधर उधर की बातों का बहुत चिंतन करते हैं, समाचार संसार के सुनते रहते हैं, कोई मिल जाता है उनकी बातें पर चिंतन की बातें, इसने ये किया उसने ये किया, ये ऐसे करता वो ऐसे, यहाँ ऐसे चलता वहां ऐसे चलता, उन बातों का समय आ रहा है तो नेचुरल है जब हम योग में बैठेंगे तो बुद्धि भटक जाएगी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे इस बुद्धि को पहले ज्ञान युक्त बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, जो बाबा की अच्छी अच्छी बातें मुरली से सुनते हो उस पर मनन करो, चिंतन करो, स्वरूप में लाओ। मुरली सुनने की विधि भी यथार्थ चाहिए, ऐसे नहीं बहन ने सुना दिया हमने सुन लिया। आज लॉकडाउन के अंदर सबने शायद इस पर सुना होगा, ऊपर सुनते होंगे, लेकिन मुरली की यथार्थ विधि अगर हम सबको आती है कि जिस प्रकार मान लो बाबा अभी परमधाम की बात कर रहे हैं, बाबा भी इस बात कर रहे हैं साकार मुरलियों में तो बहुत सारी वैरायटी बातें आती हैं। पॉइंट आई है उसी पॉइंट का हम स्वरूप बन जाए, बनते जाए, उसका अनुभव करते जाए। बाबा आत्मा का अगर मुझे पाठ पढ़ा रहा है कि आप आत्मा हो, पिंड है, उसके अंदर इतना बड़ा रिकॉर्ड भरा हुआ है, वो रिपीट हो रहा है, ये ड्रामा बहुत एक्यूरेट बना, बहुत सारी बातें ज्ञान की आती हैं। ज्ञान की पॉइंट्स को सुनते सुनते अगर हम उसका स्वरूप बनकर सुनने वाली कौन है, कैसे सुना रही है, उसको देखने की बजाय बाबा जी कहे हैं बच्चे आप एक आत्मा हो, अभी वापस घर चलने का समय है, आप कल परसों की मूल्य में था सतपंथ पर हो, बिल्कुल किनारे पर हो, अब सबको वापस जाना है, तो क्या ये सुनते सुनते मेरी ये बनती गई कि मैंने बिल्कुल सब छोड़ दिया, दुनिया का किनारा एकदम लास्ट में पहुंचे हैं। सतपंथ तो समझते होंगे ना, सिंधी शब्द है सड, कहते हैं आज को। हमारी दीदी का एक शब्द था, दीदी मनमोहिनी का सिंधी शब्द यूज करती थी, फलाने को सड करो, बुलाओ, आवाज दो उसको, सतपंथ किनारे पे एकदम लास्ट में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही हम सब अभी ऐसी इस कलयुगी दुनिया के बिल्कुल छोर पर लास्ट में पहुंचे हैं, आवाज दें तो उस यहाँ की आवाज उस तरफ जा सकती है। तो ऐसे जब बाबा की मुरली हम सुनते हैं, ये शब्द सुनते हैं, तो उसका स्वरूप बनने का अभ्यास करें, उसके चिंतन में जाएं, तो क्या है बाबा कह रहा है, इतना सब पूरा करके आए 84 जन्मों का खेल और अब हमको वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है, इतना समीप पहुंच चुके हैं। तो बाबा की किसी भी बात को मुरली से सुनते सुनते उसका हम स्वरूप बने, उस पर मनन करें, चिंतन करें, उसकी गहराई में जाएं, तो ये एक योग का एक अच्छा फाउंडेशन पड़ता है। अगर योग का फाउंडेशन ही नहीं है और ऐसे आकर कोई बैठ जाए मुझे योग अच्छा लगता है, ज्ञान सुनना अच्छा नहीं लगता, मुरली समझ में नहीं आती, तो कैसे योग करेगा वो, क्योंकि योग का आधार पढ़ाई है, योग का आधार ज्ञान है। इसलिए हरेक को इस बाबा की मुरली के महत्व को यथार्थ समझना जरूरी है। इसलिए बाबा ने टीचर्स बिठाए, नहीं तो योग तो ऐसे भी कर लो आप। तो हम सब पहले ज्ञान मुरली को यथार्थ समझ करके ज्ञान चिंतन और ज्ञान चिंतन करते करते उसके स्वरूप में स्थित होते हैं, तो ये लगता है कि हमारी ये योगी जीवन है, योग का मनन चिंतन चल रहा है। उसके बाद बाबा कहते हैं बच्चे बीच बीच में बाबा से रूह ध्यान करो, दिल की बातें करो। इतना श्रेष्ठ भाग्य जो मिला है, जो इतनी ऊंची प्राप्तियां हुई हैं संगम युग पर, कभी बैठ करके विचार तो करो क्या मिला है, कैसी बाबा ने जीवन बना दी है। एक भाई मेरे पास आया था, एक जगह मैं गया, कहता भाई साहब मैं अपना अनुभव सुनाऊं, तो मेरे मुझसे निकला सुना दो, गाड़ी चला रहा था सुनाने लगा, तो अचानक कहता है भाई साहब मैं तो रावण का भी बाप था। तो मुझे देख करके थोड़ा सा आश्चर्य लगा, मैं क्या बोलते हो, बोला शायद रावण के अंदर इतने ऐब नहीं होंगे, इतनी बुराइयां नहीं होंगी जितनी मेरे जीवन में थी, और मैं इतना तो पीता था, इतना नॉनवेज ही वो, इतना गुस्सा, इतना सब कुछ था जो मेरी जीवन बिल्कुल नरक से भी गई गुजरी थी। बहुत सारी अपनी कहानी पास्ट की सुनाने लगा, और सुनाते सुनाते कहता है पता है बाबा ने मुझे कैसे ढूंढा, मैं जब घर से निकलता था तो लोग अपने घरों का दरवाजा बंद कर लेते थे, बच्चों को अंदर कर लेते थे, कहीं मार न दे, कभी कुछ कर न बैठे, क्रोध बहुत था मेरे को, तो लोग डरते थे मेरे से, मेरा बिजनेस चला गया, मेरी सोने चांदी की दुकान थी वो सब लूट गई, सब इसी में मैंने खत्म कर दिया, पूरा परिवार मेरा एंटी हो गया। तो ऐसे ही मैं एक दिन जा रहा था, और ऐसे जाते जाते मैंने ब्रह्मा कुमारी का बोर्ड देखा, और ऐसे सेंटर में अंदर चला गया, ऐसे बिना बताए, और गया, और बाबा ने मेरे पर जादू लगा दिया, बस जाते ही मेरे अंदर परिवर्तन आना शुरू हुआ। बहनों ने बहुत प्यार से मेरे से बात की, ऐसा लगा है कोई अपनी बहनें मिल गई, और बहुत अच्छी तरह से कहा भाई कोर्स कर लो, यहाँ पर पढ़ाई होती है। हाँ हाँ मैं करता रहा और मेरा जीवन 5-7 दिन में पूरा चेंज हो गया। और ऐसा चेंज हुआ जो आज मुझे उस चीज देखने की सोचता हूँ भी कहता हूँ क्या था मैं, क्या बना दिया बाबा ने मुझे। एकदम नरक में पड़ा हुआ था, नरक के कीड़े को बाबा ने एक फरिश्ता बना दिया। और ऐसे कहते कहते उसकी आंखों में आंसू एकदम झरना बहने लगा। ऐसी बाबा ने प्राप्तियां कराई, ऐसी जीवन बनाई है संगम पर। सतयुग में बनेंगे वो तो बात की बात है। कई आत्माओं को संगम पर इतनी प्राप्तियां बाबा ने कराई हैं, चेंज हुए हैं। और अगर हम इस संगम की प्राप्तियों को याद करते हैं, खान पान क्या था, बोल चाल क्या था, रहन सहन कैसा था, एक बाबा ने इतना स्वच्छ पवित्र योगी जीवन दी है, हर बात से एकदम निश्चिंत बनाया है, पालना दे रहा है, अपनी गोदी में बिठाया है, पढ़ा रहा है, तो बाबा के प्रति जो अंदर से प्यार निकलता है इसको कहते हैं रूहरिहान। बहुत दिल से बातें करो, बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया है। और मैं तो कहता हूं अगर योग का सहज अनुभव करना है ना तो ऐसे प्यार में बाबा को पत्र लिखो, अपनी भावनाएं व्यक्त करो भगवान के लिए। और जब लिखने लगेंगे ना, कलम चल गई अगर और आपकी बुद्धि में आने लगा तो आंसू भी आएंगे प्यार में, और बहुत प्यार से उसके प्रति इतनी शुक्रिया निकलेगी बाबा आपने क्या से क्या बना दिया। लिखा है कभी कभी किसी ने पत्र के नहीं लिखा बाबा को, लिखना। यहाँ आए हो तो कभी एकांत में किसी बाबा के कमरे में किसी कोने में बैठ जाना और अपने आप डायरी पर ऐसे लिख दो, लिखते जाओ लिखते जाओ। कई बार तो ऐसा पन्ना खुल जाता है घंटों लिखते हैं। हम लोग एक बार पीस पार्क में गए भट्टी में, ऐसे ही काम दे दिया सबको ये लिखने का। हमने क्लास इनका क्या कराना है, समर्पित भाई हैं। हमने कहा सब अपना अपना खुदा को पत्र लिखो, दोस्त को। मैंने खुद लिखा और जब लिखने लगा तो घंटों में लिखता गया, लिखता कई पन्ने लिख डाले, सबने लिखा। तो लास्ट में मैंने जब फिर से क्लास शुरू किया, हमने कहा अभी सुनावा करके कोई, तो एक भाई खड़ा हुआ सुनाने के लिए, कहता है सारी दुनिया में भक्ति में जितने भक्त हुए होंगे उन सब से हट करके हमने कोई भक्ति की होगी जो आज भगवान हमारे ऊपर मेहरबान होकर के अपने घर में रखा है, अपनी पालना दे रहा है, अपने पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं, कोई प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं। क्या भाग्य है, कैसी भक्ति हमने की होगी। बहुत अच्छा लिखा था उसने, मैं पढ़ करके सुन करके इतना सबको आया कि सचमुच भगवान ने कुछ तो देखा होगा जो हम लोगों को ऐसा निश्चिंत जीवन दी है। फिर लिखते लिखते सबने लिखा और सबके बस प्यार में, यही योग है। मैं कहता हूँ योग क्या है, योग लगाना माना क्या, ऐसे आत्मा समझ करके ऊपर चला जाना फिर नीचे आ जाना। कई लोग यही समझते हैं मैं कुछ देख लूं, कुछ तिनका दिखाई दे, कोई बिंदु दिखाई दे, कोई बाबा दिखाई दे, ये योग है। यहां बिल्कुल शांत हो जाए, कोई हलचल न रहे। बाबा कहता नहीं बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, बहुत प्यार से दिल से बाबा से रूह ध्यान करो, बातें करो, अंदर अंदर खुशी में नशे में समान में स्थित हो जाओ। बाबा आपने मुझे कितने ऊंचे टाइटल्स दिए हैं, नकली टाइटल्स तो हमने नहीं लिए ना। कई लोग तो अपने ऊपर पता नहीं कितने टाइटल्स रखवा लेते हैं, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कितने टाइटल्स दिए। कहता बच्चे जो मेरे टाइटल हैं तुम बच्चे उसके मास्टर हो, याद करोगे तो नशा चढ़ेगा, स्मृति रहेगी और नशे के साथ साथ वैसे कर्म होने लगेंगे। तो ये रूह रिहान करना भी योग है, सहज योगी जीवन है, सहज पुरुषार्थी जीवन। जब बाबा कहता है बच्चे बिल्कुल डबल लाइट बन जाओ, जो कुछ तुमने अपना समझा है जिसको मेरा मेरा कह रहे हो बाबा के आगे अर्पित करो, समर्पित कर दो, ये सब तेरा है। परिवार मिला है, कई प्रकार की जवाबदारियां मिली हैं, हम लोगों के पास भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आप सब प्रवृत्ति वाले जो भाई बहने आए हैं आपके पास हमसे बहुत कई बार जवाबदारियां ज्यादा होंगी। लेकिन ब्रह्मा बाबा एक बात कहते हैं कि मेरे जितना जवाबदार, मेरे जितना बचड़े वार कोई दूसरा नहीं है। एक दो बार कहते हैं बाबा के दाते हैं, जिसके माथे मामला नींद कहां से आए, ब्रह्मा बाबा के ऊपर कितनी जवाबदारियां थी। उस समय तो इतने बड़े थे, कोई जज वकील नहीं थे, कोई सामना करने वाले नहीं थे, संस्था कोई भी बातें आती थी सब कुछ बाबा के ऊपर आरोप लग जाते थे। लेकिन उसके बीच में रह करके बाबा ने कैसा गुप्त पुरुष जो नंबर वन बन गए और कभी किसी को दिखाया नहीं। बाबा की लास्ट 18 तारीख की मुरली अगर आप सुनेंगे, बाबा ने 8:30 बजे शरीर छोड़ने के आधा घंटा पहले सुनाई है। बाबा ने उसमें भी कहा है बच्चे बनना, संपन्न बनना मासी का घर नहीं है, बहुत मेहनत है। मैं भी पुरुषार्थ करता हूं, लेकिन बाबा करके कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे थे। शरीर का सवेरे से लेकर के स्वास्थ्य ठीक नहीं था। दादी जी को पता था कि बाबा की तबीयत आज ठीक नहीं है, लेकिन बाबा ने कभी महसूस होने नहीं दिया कि मेरे कुछ है। मुरली पूरी मुरली सुनाने के लिए भेजा नहीं, दादी ने जाने नहीं दिया। सुबह मालूम होगा ना, दादी ने बाबा को कहा आज आप मुरली नहीं सुनाएंगे, बहुत ठंडी थी, खांसी बाबा को थी। दादी गई क्लास करा के आई सवेरे के समय, और बाबा को नहीं जाने दिया। लेकिन जब बाबा के पास फिर दादी बताई बच्ची बाबा को कोई तकलीफ नहीं है, बच्चों इतने सारे ढेर सारे पत्र आए हैं, बाबा को उत्तर देना है सबको, चलो बच्ची ऑफिस में चलो। और बाबा ने ऑफिस में बैठ करके 40-50 में यीशु दादी सुनाती दी बैठी, बाबा बैठे पत्रों का जवाब दिया। उसके बाद पूरे घर का राउंड लगवाया दादी को, चलो बच्ची देखो कहाँ क्या बन रहा है, बाबा को कौन कौन से प्लान आते हैं, कैसे करना है, क्या करना है। अब दादी यू नहीं पता रही, कुछ नहीं जानने दिया, अनुभव करने दिया, लेकिन एक नेचुरल रूप से बोला, सबसे मिलाया, लास्ट में मुरली सुनाई। मुरली सुनाने के बाद उड़ गया पंछी। गुप्त पुरुषार्थ, नेचुरल पुरुषार्थ, सहज पुरुषार्थ करके कर्मातीत बन गया। और क्यों बना उसकी बहुत बड़ी कहानी गई। कहता अगर नहीं बनता तो शरीर का बंधन, साधनों का बंधन, बहुत सारे बंधन, विश्व कल्याण की सेवा कैसे होती। शिव बाबा साथी बना और तब से लेकर के इतनी फास्ट स्पीड की मैं सेवाएं करा। तो पीछे नहीं आते, वो बहुत सारे सुनाए बाबा ने। कहना है ये पुरुषार्थ दिखावे वाला नहीं है। सब कुछ करते हुए बाबा ने इतनी सब जवाबदारियां होते हुए अपने आप में कभी भी फिक्रात का चिन्ह नहीं दिखाया। कोई फिक्र, कोई चिंता है, कोई बात है नहीं, बच्चे बाबा बैठा है। एक परिवार में 4-6 सदस्य अगर होते हैं, अपने के कुछ ना हो, कोई भी चीज ना हो, तो उनको कितनी चिंता लगाई, कहां से आएगा। और बाबा के पास 350 के ऊपर बच्चे हैं सामने, और कुछ भी नहीं है, दोपहर के लिए भोजन क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, भंडारी बार बार जाते, बाबा आज क्या बनेगा, कुछ नहीं है। और बाबा बेफिक्र वास्ता है, बच्चे कौन आने वाला है, इतना निश्चिंत स्थिति, बेगमपुर की स्थिति, कोई भी मैं नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, अरे बाबा के बच्चे हैं। और समय पर भोजन की बेल बजी थी, सबको मिला। बच्चे थे, उनको लगता था पता नहीं आगे क्या होगा, ऐसा होगा, प्रश्न में आए, लेकिन बाबा खुद भी नहीं हिले और बच्चों को भी जो पक्के थे उनको हिलने नहीं दिया। बच्चे तुम्हारे पास इतना अपने धन दिया है, ज्ञान धन है, गुणों का धन है, धन बांटो, वो धन अपने आप आ जाएगा, सेवा का साधन बना। यही परीक्षा ही परीक्षा नहीं लेता तो शायद कोई केंद्र नहीं खुलते। ये भी कोई बाबा का खेल था, और खेल में खेल हुआ और इतनी सेवाओं का विस्तार हो गया। ये सब बाबा कैसे कर रहा है, लेकिन सब कुछ करते हुए अपने आप को छिपाया हुआ है। हम सभी कभी कुछ करते हैं, उस कर्तापन का जो नशा है ना, वो दुआएं नहीं देना। कहना चाहता हूं अगर जरा भी हमने किया, करने के पीछे ये भाव आ गया कि मैंने किया, मैं कर रहा हूं, तो वो मैं अभिमान की निशानी है। और मैं जहां आता है वहां दुआएं नहीं मिलती, निमित्त भाव समाप्त हो जाता है। तो इन दादियों ने, बाबा ने जो इतने सब ब्राह्मणवार की, इतने सब बच्चों की दुआएं जमा की, बाबाने हैं दादियों की पालना ली है, दादी की खास प्रकाशमय दादी। कभी भी हम लोग गए हैं दादी के शारीरिक कोई भी प्रॉब्लम थी, दादी कहती थी सबकी दुआएं हैं, सबकी है। और उन दुआओं के कारण मुझे कोई दर्द नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बाबा के साथ हूं। कभी भी नहीं दिया बीमारी का, कभी बोल में कि मेरे को ऐसे, इतना निश्चिंत, सबकी दुआएं हैं। और सबसे बाबा को मिली हुई है, जिन बच्चों ने बाबा को अपनी सब जवाबदारियां अर्पित की वो डबलक बने, फरिश्ता स्थिति उनकी बन गई, कोई जवाबदारी का बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि बाबा करण करावन आ रहे, वो करा रहा है। हम लोग तो निमित्त बनाए, कभी मेरी कोई महिमा करता है, कोई सुनाता है, भाई बेटा सुना, मैं तो पढ़ के आया, न कोई पोस्ट पोजिशन ले गया, बाबा ने दादियों ने सिखाया और करा रहा है, हम तो निमित्त ही कर रहे हैं, हमको कभी टेंशन होता नहीं, मैं कर रहा हूँ, जो बड़ों ने कहा हम कर दिया, बस केवल एक ही पाठ पढ़ा, हाँ जी बस। दुआएं लेने का सबसे अच्छा साधन बाबा ने बता दिया है, कोई भी कार्य आता है हाँ जी करो, कार्य वाला लेखा बाबा करण कराओ ना रहे, निमित आत्मा और हम हाँ जी करते हैं तो वो हाँ जी में भर देती है, हाँ जी किया है उसकी दुआएं अपने आप सब काम बहुत स्मूथ कराती है। बड़े बड़े कार्य जो हमने कभी नहीं कहा मैं नहीं कर सकता, या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे नहीं आता, लोग कभी भी मैंने अगर थोड़ा शब्द वैसे बोला वो दादी मेरे को नहीं आता, एक बार जान की दादी ने ऐसा मुझे काम दिया, दादी का किसी गुरु से बहुत संबंध था, गुरु थे यहाँ पूना में, तो इसको तुम पत्र लिखो, तुम लिखेगा तो आएगा। तो मैंने कहा दादी उसको न मैं जानता हूं, न मेरे लिए उसके लिए भाव है, भाई कौन है कैसा है कैसे लिखूं मैं, आप कुछ बताएंगे? कहती नहीं तुम जाओ, मैं कहूंगा तुम लिखो जा करके, उसको पत्र लिखो, उसको मधुबन में आए या लंदन में आए। मैं फंस गया, हमने कहा अभी दादी को ना कैसे करूं, मैं तो कहता था भाई बड़े बैठे हैं, दूसरे लोग बैठे हैं लिखेंगे, नहीं नहीं तुमको लिखना है। मैं गया ऑफिस में, गया बैठा, मैं बाबा उस व्यक्ति को मैं नहीं जानता, किन शब्दों का संबोधन करना है, क्या लिखना है, मैं क्या जानूं भाई। ज्ञानी बच्चों को बाबा के पत्र लिखना वो अलग बात होती है। मैं बैठ गया, बाबा को कहा, जब मैं बाबा को वो पत्र बना करके दादी के पास ले गया, पढ़ा दादी ने, कहती देख कहा था ना मेरे दिल को समझता है, जो मेरे दिल में था उसने तूने कागज पर लिखा है और कुछ थोड़ी लिखा है, माना इतना अंदर से फेथ और मैंने हाँ जी किया है तो जैसे वो आकर के लिखा के गई। तो ये कहने का भाव मेरा है कि अगर बड़ों ने कोई काम दिया है और हमने दिल से स्वीकार करके कर दिया है तो दुआएं मिल गई। आज बाबा ने इतनी श्रीमत दी, इतनी श्रीमत मिली, अमृत वेले उठो, पहले संकल्प में मेरे से गुड मॉर्निंग करो, फिर ज्ञान चिंतन करो, मुरली का अध्ययन करो, फिर कार्य व्यवहार में आते बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, अपने संकल्पों को ब्रेक दो, भोजन की शुद्ध भोजन की भोग लगा करके भोजन स्वीकार करो, संघ का ध्यान रखो, ये जो नियम बनाए, जो मर्यादाएं बनाई, अगर कोई ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को आज्ञा समझ करके पालन करता है, उस आज्ञाकारी बच्चे को भगवान की दुआएं मिलती हैं। और कोई पुरुषार्थ करो न करो, लेकिन अगर बनी हुई ईश्वरीय दिनचर्या को अमृत वेले से रात्रि तक यथार्थ रीति से पालन करते चलो, आप देखेंगे बहुत सहज रीति से बाबा की दुआएं हमारी ऊंचे से ऊंची स्थिति अपने आप बना देंगी। कोई मेहनत का पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। कई बार मैं कहता हूं लोगों को, चलो कोई दिन एक आधा दिन 15 दिन एक मास में एक दिन 2 बजे उठ के योग किया, कोई बात नहीं है, तो मेहनत हम लोग भी करते हैं, कराते हैं, दादी जी ने भी हम लोगों से कभी कभी कराया। कई लोग सोचते हैं मैं रोज 1:30 बजे उठ जाऊं, रोज 2 बजे उठ करके योग करूं, दिनचर्या है, शरीर है, अगर आप उसको पूरा रेस्ट नहीं दे रहे हैं, उसको जो आवश्यकता है शरीर को वो नहीं पूरे कर रहे हैं तो शरीर भी कब तक साथ देगा। इसलिए नेचुरल सहज पुरुषार्थी बनो ना, क्यों मेहनत कर रहे हो। नियम बनाया बाबा ने, 3:30-4 उठो, 4:45 योग करो, दिनचर्या प्रमाण अगर चलोगे तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। अगर आप 10 बजे की बजाय 12 बजे सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो, दिनचर्या को अपसेट कर रहे हो और फिर कहो मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत मेहनत लगती है, मैं उठ तो जाता हूं योग में लेकिन योग नहीं लगता है, कैसे लगेगा योग, क्योंकि दिनचर्या पर आपका ध्यान नहीं है, दिन में रेस्ट नहीं मिल रही है, तो अमृत वेले बैठोगे भी, हठ भी करोगे तो 5-10 मिनट मुश्किल से फिर वही योग टूटेगा और सुस्ती आएगी। अगर कोई ब्राह्मण आत्माएं सहज पुरुषार्थी बनना चाहती हैं तो यज्ञ की बनी हुई दिनचर्या को यथार्थ रीति से पालन करो, उसी प्रमाण अपने जीवन को ढाल लो, और उस प्रमाण अगर आप चल रहे हैं, कोई मेहनत नहीं है, सहज पुरुषार्थी जीवन है, और कोई भी बातें आती हैं। सबसे बड़ी बात है कि कई बातें इस कलयुग के अंतिम समय में हिसाब किताब के रूप में आ रही हैं, हर एक के सामने आती है, चाहे शारीरिक हिसाब किताब आ रहे हैं, चाहे मानसिक आ रहे हैं, चाहे पारिवारिक हैं, चाहे आर्थिक हैं, जो भी हमने कर्म किए हैं 84 जन्मों में, चलो 21 जन्म हमारे गए कर्म अकर्म में, विकर्म नहीं बने, लेकिन 63 जन्म देहमान के कारण कई ऐसी गलतियां हुई हैं, पाप हुए हैं, कभी चुक तो भी किया है बीच बीच में, लेकिन अंत समय में बाबा कहता है सब चुक तो करके वापस चलना है, कुछ योग बल से, कुछ भोग करके, और अगर हमने योग बल से चुक तो नहीं किया और रह गए हिसाब किताब, तो फिर धर्मराज पूरी लास्ट है, आत्मा को सब हिसाब किताब चुक तो करके ही वापस जाना है, सबके पास ज्ञान है। ये हम अपने आप को चेक करें कि अगर हमारे को पुरुषार्थ में मेहनत लग रही है, तो कौन से ऐसे पास्ट के हिसाब किताब हैं जो पास्ट के हिसाब किताब मेरे वर्तमान पुरुषार्थ में मेहनत का अनुभव करा रहे हैं। चेक तो करो, और चेक करने के लिए कभी कुछ समय के लिए एकांतवास कर लो। दृढ़ता का संकल्प कर लेना ही तपस्या है। दृढ़ता का संकल्प उसको उसे कहा जाता है जिसमें कहते हैं मरेंगे मिटेंगे लेकिन इससे हटेंगे नहीं। बहुत दृढ़ संकल्प से बाबा ने कहा है मुझे करना ही है, संस्कार चेंज हो जाएंगे, हिसाब किताब बहुत सूली जैसे होंगे। अगर किसी के पास दुआएं हैं, सुख दिया है, समय पर किसी को मदद दी है, हर एक आत्मा से स्नेह प्राप्त किया है, मददगार बन करके, मधुर बोल बोल करके, सबको साथ दे करके, सहयोग दे करके, दुआएं जो जमा की हैं, पेपर आएंगे, लेकिन वो ऐसे लगेगा जैसे कुछ नहीं था, सहज पार कर लिया। सूली कांटा तब बनी, बड़े से बड़ी बात सहज पूरी तब हुई जब उस आत्मा ने इस ब्राह्मण जीवन में सदा ध्यान रखा मुझे सबकी दुआएं लेनी है। हर एक लक्ष्य रखो, क्योंकि बद दुआएं जो हैं, बद दुआएं जिनको हम कहते हैं, वो कभी भी हमें खुशी में रहने नहीं देती हैं, योग लगने नहीं देती हैं, बहुत अंदर अंदर डिस्टर्ब करती हैं, मेहनत का अनुभव कराती हैं। हमने शुरू से यही ध्यान रखा है इस ब्राह्मण जीवन में, जब से मैं बाबा का बच्चा बना हूं, चाहे अपने डिपार्टमेंट के अंदर 7-8 भाई बहने काम करते हैं, भाई काम करते हैं, चाहे हम इस परिवार के अंदर रह रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, इतने सब मधुबन में 1500 के लगभग तीनों स्थानों पर समर्पित हैं, या आने वाले हजारों भाई बहने हैं, मैं अपने डिपार्टमेंट में एक बात कहता हूं, आप लोग ध्यान देना, ये सब कुछ बाबा ने दिया है, मेरा तो कुछ नहीं था, मैं तो कुछ लेके नहीं आया, बाबा ने मुझे दिया है कि बच्चे सबको सुख दो, इससे सबकी इससे सेवा करो, दिया हुआ उसका है, अगर कुछ जा भी रहा है तो उसका जा रहा, मेरा नहीं जा रहा है, लेकिन अगर मैंने उस डिपार्टमेंट में मैंपन रखा कि मेरा है, और उस अधिकार से मैंने किसी को संतुष्ट नहीं किया, खुश नहीं कर पाया, और उसने बाहर जाकर के मुझे आत्मा के प्रति ये सोच लिया, ये क्या समझता अपने आप को, ये मालिक बन गया है क्या, तो ये बद्दुआ नहीं है क्या, बद्दुआ और कैसे देगा वो, बद्दुआ तो यही हो गई कि मुझे जो डिपार्टमेंट मिली सुख देने के लिए, सबको राजी करने के लिए, सहयोग देने के लिए, उसकी बजाय मेरे को ये आया कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाए, ठीक है, नियम है, कायदे हैं, हम ऐसे व्यर्थ लुटाएं नहीं, अगर कोई व्यर्थ कर रहा है तो हम उसको प्यार से समझाएं, लेकिन उसको असंतुष्ट न करें, संतुष्टता दुआएं दिलाती है। हर एक की एक लक्ष्य रखे कि जो डिपार्टमेंट, जो कार्य, जो विधियां, जो हमारे जवाबदारियां हैं, उन जवाबदारियों के आधार से संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को मैं इतना संतुष्ट कर दूं जो उसके द्वारा मुझे दुआएं मिले। एक बार की बात सुनाता हूं, क्योंकि दादी जी को बाबा बहुत कभी कभी चिटचैट करते थे दादी से, पहले दीदी से करते थे, फिर दादी जब 83 के बाद पूरी जवाबदारी आई तो दादी के पास बाबा एक दिन आए थे, दादी बाबा के सामने बैठी, बाबा पूछने लगे बड़े मुस्कुराते हुए से, बच्ची हम मधुबन वाले बैठे थे, बच्ची तुमसे सब संतुष्ट हैं? एक बार पूछा, दो बार पूछा, तो दादी ऐसे देखती रही बाबा को, बाबा ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं मैं क्या जवाब दूं। मैं सुना रहा था कि बाबा ने दादी जी से 3-4 बार जब पूछ लिया, संतुष्ट हैं सभी आपसे, सभी संतुष्ट हैं, तो दादी बहुत प्यार से बोलती है, बाबा ये सर्टिफिकेट तो आप देंगे ना, मैं कैसे दूं, मेरे से सब संतुष्ट हैं, क्योंकि जब कोई दो डिस्टर्ब होके आते हैं, अगर एक की तरफ कोई निर्णय हो जाता है, दूसरे को लगता है कि मेरा नहीं सुना गया, वह संतुष्ट हो जाता है। तो दादी ने तो बड़े प्यार से बाबा, बाबा ये सर्टिफिकेट तो आप दोगे, तो बाबा ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि बच्ची आपने अपनी तरफ से 95% लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया और उसमें पास हो, 5% जो डिस्टर्ब होते हैं वो अपने कारण होते हैं, अपने संस्कार के कारण, और आगे चल करके वो रियलाइज करते हैं कि दादी की गलती नहीं थी, ये गलती मेरी थी, इसलिए आपकी गलती नहीं है। तो हम सब इस ब्राह्मण जीवन में एक लक्ष्य रखें, जो भी हमारे संबंध संपर्क में आत्माएं आए हैं उन्हें हम हर प्रकार से अपनी तरफ से, उनके स्वभाव हैं, संस्कार हैं, हिसाब किताब हैं, वो संतुष्ट नहीं होते, वो उनकी बात है, हम अपनी तरफ से उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करें, उन्हें जो सहयोग चाहिए हमारी तरफ से दें। लेकिन एक बात का बहुत अंडरलाइन करना है, इसमें बाबा का एक शब्द है, श्रीमत के अंदर रह करके दूसरों को संतुष्ट करके दुआएं लेना। ऐसे न हो हम आत्माओं को संतुष्ट करके दुआएं लेने लगे और श्रीमत का उल्लंघन हो जाए। परमात्मा की जहां बद्दुआएं मिली माना वो संतुष्ट नहीं हुए, और आत्माएं हमसे संतुष्ट करने के लिए, हम उनको खुश करने के लिए, उनकी दुआएं लेने के लिए हम श्रीमत की अवज्ञा कर रहे हैं, तो ये बद्दुआएं मिलती हैं। ये बहुत गहरी बात सुना रहा हूं, इसको ध्यान देना। कई लोग अपने पारिवारिक जीवन में सोचते हैं भाई बाबा ने कहा सबकी दुआएं लो, और ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं के विपरीत कोई कर्म मेरे से कराना चाहता है तो क्या वो दुआएं लेनी चाहिए? उन दुआओं की जरूरत नहीं है, वो देह अभिमान के पर्वत हैं आत्माएं, वो माया की मत है, श्रीमत नहीं है। इसलिए माया की मत में अगर कोई असंतुष्ट भी हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो भी मुझे उसकी परवाह नहीं करनी है, क्योंकि सबसे बड़ा वायदा हमारा है तेरी श्रीमत सिर माथे, कुछ भी हो जाए अगर बाबा की श्रीमत सिर माथे है, हमने बीज को पकड़ा है तो वृक्ष एक दिन अपना होना ही है, बीज हमारे साथ है ना। इसलिए ये नाराज हो गया, ये टाली नाराज हो गई, ये नाराज हो गया, हम उसकी परवाह किए बिना बाबा की श्रीमत क्या कर रही है उस श्रीमत को ध्यान पर रखते हुए अगर हम चलते हैं तो एक न एक दिन सामने वाली आत्मा स्वतः संतुष्ट हो जाएगी। ये लोग अपने नियम में बड़े पक्के हैं, इनकी धारणाएं बड़ी अच्छी हैं, वो दुआएं देने लगेंगे। और अगर एक बार आप लूज हो गए किसी कारण से, भाई असंतुष्ट हो रहा है, नाराज हो रहा है, इसके पास जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो ये अपनी कमजोरी है, ये बाबा की श्रीमत नहीं है, हमारे संकल्पों में उदृढ़ता नहीं है जो हम सामना कर सकेंगे, नहीं ये हमारा नियम है। आज डॉक्टर किसी को कहता है तुमको शुगर है इतनी हाई लेवल, आप ये चीज नहीं खाना, कितना भी आपका प्यारा संबंधी आप पर जिद करे खाना पड़ेगा तो भी आप हाथ जोड़ेंगे, भाई मैं नहीं खाऊंगा, मानेगा वो एक दिन, एक न एक बार। लेकिन अगर आप लूज हैं, चलो खा लो, बेचारा नाराज हो रहा है तो खा लो। तो ध्यान देना कि अगर परमात्मा की सच्चे दिल की उसकी दुआएं हमें चाहिए, क्योंकि कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की तो सिर से उतरेगी गठरी पाप की। योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर माता पिता की दुआएं हैं तो। मुझे तो यही अनुभव होता है, मैं अपने जीवन में यही अनुभव करके चलता हूं। कोई भी परीक्षा आए, कैसी भी आई, हम लोगों के सामने नहीं आई क्या, समाज लौकिक की आई, शरीर की आई, कई भी बातें आई, दुआएं हैं बड़ों की। और बड़ों की दुआएं बाबा साकार में भले नहीं, लेकिन साकार ने जिन आत्माओं को निमित्त बनाया उन आत्माओं की इतनी दुआएं हैं जो कोई भी बात आई बहुत सहज पार हो गई, और उन्होंने भी ऐसे कहा भूल जा कुछ नहीं है, उन दुआओं ने पार कर दिया। हम सब बाबा के बच्चे, बाबा के सच्चे सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानवरदार, ये चार शब्द याद रखना, चार हैं एक जैसे लेकिन चारों के भाव अर्थ अलग अलग हैं। आज्ञाएं बाबा की जो मिली हैं दिनचर्या के लिए हैं, श्रीमत के लिए हैं, उनको हम पालन करें, आज्ञाकारी हैं। वफादारी ये है जिस थाली में कहते खाओ उसमें छेद नहीं करो, जिस परिवार से, जिस बाप से हमें इतनी पालना मिली है उसके घर की सुरक्षा करना, उसकी मर्यादाओं को पालन करना, दृढ़ता के साथ एक वृत्ता होकर के रहना। वैसे भी कहते हैं पति पत्नी के संबंध में वफादारी होती है, अगर जरा भी कहीं उसकी आंख गई तो ये वफादार नहीं है, तो ऐसे ये वफादारी उसको कहते हैं जो एक वृत्ता है दिल में, और कोई भी किसा भी हो, कितना भी धनवान हो, रूपवान हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सहयोगी हो, स्नेही हो, लेकिन मुझ आत्मा पर अपनी प्रभाव की छाप नहीं डाल सकता, उसको वफादारी कहते। प्रभाव एक का है, कोई कितना भी आज चमत्कार करने वाला आए, सिद्धि स्वरूप आत्मा आ जाए और कहे हम तुमको ये कर देंगे ये कर देंगे, अगर उसकी तरफ आत्मा प्रभावित हो गई माना वो वफादार नहीं है। वफादारी ये है कि हम एक के हैं, हम भगवान को पाया है, उसके बच्चे हैं, वो हमारा रक्षक है, वो हमारा संरक्षक है, मुझे कोई सिख कोई की चीज की जरूरत नहीं है। अगर कहीं भी आंख नहीं डूबती न धन में न संबंध में न रूप में न रुपया में, तो कहेंगे वफादार है। और ईमानदारी जो कुछ बाबा ने दिया है अमानत उसकी है, हमें सफल करना है, कार्य में लगाना है, जरा भी व्यर्थ न जाए, वो ईमानदारी वो ऑनेस्टी है। जो कुछ है सच्चे दिल से बाबा के आगे पोता में रखना, ये हिसाब किताब है, ये आया है, ये खर्चा हुआ है, आपका है, मेरा कुछ नहीं है। बढ़ाओ, सफल करो, अमानत समझ करके कार्य में लगाओ, लेकिन उसमें मैं और मेरेपन की ममता न हो जाए, अधिकार न रखो, गलत जगह पर उसका यूज न हो, उसमें बहुत ईमानदार बनकर रहना। और फरमान कहते हैं, आज्ञा ही है फरमान, लेकिन वो है कुछ एक बातों के लिए सख्त फरमान होते हैं, जैसे मिलिट्री के अंदर ये नहीं करोगे तो शूट कर दिया जाएगा, ऐसे बाबा ने कुछ ऐसे फरमान किए हैं, जैसे काम महाशत्रु है, इस काम विकार के अधीन हुए माना आपने फरमान का उल्लंघन किया, ऐसे ऐसे कई फरमान बाबा के हम बच्चों को मिले हैं, अगर हम उनको पालन करते हैं, आज्ञाकारी सपूत वफादार ईमानदार फरमान वरदार बन करके रहते हैं, तो भगवान हमारे पर प्रसन्न है, राजी है और उसकी दुआएं हमें मिलती रहती है। और जिसके पास दुआएं हैं, आप कहीं भी चले जाओ, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, किसी भी प्रकार की परवाह नहीं है, भगवान की दुआएं हैं, उसकी छत्र छाया के नीचे मैं चल रहा हूं, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, निर्भय है, निश्चिंत है, लेकिन अहम भाव ना है। जहां अहम भाव आ जाता है, अहंकार प्रवेश हो जाता है, वहां पर दुआओं की बजाय बद्दुआएं मिलने लगती हैं। भले कितनी भी पद पोजीशन, कितना भी मुझे मान सम्मान सबका मिलने लगे, लेकिन मेरे अंदर ना आ जाए कि मैं तो इनसे सबसे बड़ा हूं, मैं तो बहुत समझदार हूं, मेरी क्लासेस तो हाईलाइट हो रही हैं, मेरा तो ये हो रहा है, मेरा क्या है। अगर ये बात हमारी बुद्धि में आती है तो निर्माणता दुआएं दिलाती है और अहम भाव बद दुआएं दिलाती है। तो हम सब बाबा के बच्चे अपने जीवन में देखते चले, कहीं भी कोई रुकावट आए, किसी भी प्रकार का मेहनत का अनुभव हो, तो चेक करना कोई आत्मा मुझे सूक्ष्म में भी बद्दुआ तो नहीं दे रही है किसी भी कारण से। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करो, अगर कोई हिसाब किताब है और हो रहा है ऐसा, तो उसको योग बल से समाप्त करने के लिए मेहनत करो, उसमें मेहनत करो, योग बल से खत्म हो जाए, बाबा की याद से समस्या समाप्त हो जाए। तो हम सब बाबा के बच्चे सहज पुरुषार्थी बने। सहज पुरुषार्थी का बहुत अच्छा अर्थ बाबा ने बताया है, पुरुष आत्मा इस रथ पर है, मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है, नेचुरली अभ्यास करते करते मैं आत्मा हूं, मैं अकाल तख्त पर हूं, मैं इन कर्म इंद्रियों का आधार लेकर के कर्म करा रही हूं, कर रही हूं, इस स्मृति में रहना ही सहज पुरुषार्थी जीवन है। मेहनत नहीं है इसमें, नेचुरल स्वरूप है हमारा, और उस नेचुरल स्वरूप में आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के कर्म इंद्रियों से कर्म कराना, अलग हूं कर्म इंद्रियां अलग हैं, मैं अलग हूं, जब ये स्मृति रहती है तो पुरुषार्थ सहज है, नेचुरल है, और उस सहज पुरुषार्थी आत्मा को दुआएं मिलती हैं, और दुआएं मिलने वालों की पुरुषार्थ बड़ा सहज इजी हो जाता है। मेरा तो अनुभव कहता है, आप सभी भी करके देखना, जिस आत्मा को अपने बड़ों की, बाबा की, निमित्त आत्माओं की, जो हमारी निमित्त है उनकी, और अपने सहयोगी साथियों की, हम शरीक की दुआएं मिलती हैं, उसके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, और अगर आती है तो उसको बहुत सहज रीति से पार कर लेते हैं, उसमें समय नहीं जाता, उनकी एनर्जी नहीं जाती, बात आती है खत्म हो जाती, आएगी नहीं ऐसा तो नहीं, स्लेट क्लीन है, आएगी तो जरूर सबके सामने, लेकिन अगर आई है तो आई है तो उसमें हमारा समय एनर्जी दूसरों का सहयोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबकी दुआओं ने उसको पार करा दिया। तो ऐसे सबकी दुआएं लेते चलो, सहज पुरुषार्थी जीवन का अनुभव करो। इस जीवन में भी अगर मेहनत और मुश्किल का अनुभव होता, कई लोग तूफानों से लड़ते रहते हैं, और बाबा कहता है बच्चे योगी बनो योद्धे नहीं। अगर युद्ध करते करते शरीर छूट जाएगा तो कहां जाओगे, इसलिए ध्यान देना हम योद्धे नहीं हैं, हम योगी हैं। इसलिए सहज योगी जीवन बाबा की याद में अगर हम नियम और मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं, श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं, दिनचर्या पर ध्यान है, तो सबकी दुआएं हैं, बाबा की दुआएं और परिवार की दुआएं हैं। ठीक है, अभी हम 15 मिनट के लिए, क्योंकि मेरी दिनचर्या 6 से 8 का था, लेकिन इतने जरूरी काम थे जो मैं बहुत मुश्किल से निकल के आया। मना कर रहे थे, मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं मिलूंगा तो जरूर सबसे। आना 6 बजे था लेकिन आया 7:45। क्लास पूरा हुआ 7:45 तक। अभी हम 15 मिनट आप सबके साथ योग करेंगे, बैठेंगे ना सभी, लेकिन उस स्थिति में बैठना जिसमें किसी भी प्रकार की हलचल न हो, संकल्प भी शांत पवित्र शुद्ध। जो भी बैठे, कोई जरूरी है तो उठ सकते हैं, लेकिन 15 मिनट के लिए अपने भ्रकुटी आसन पर सब बैठ जाओ। आ जाओ जो योग कराने के लिए। आ जाओ, कुछ बोला सबके पास उड़ने के पंख है ना, तो चलो हम सभी उमंग उत्साह के नशे और खुशी के संकल्प के साथ इस देह और देह की दुनिया के पार अपने अव्यक्त और मूल वतन की यात्रा करेंगे। क्रास तो करना चाहिए, तो इस साकार वतन से अव्यक्त वतन में जहां बाप दादा हम बच्चों का आह्वान करते हैं बुद्धि योग से, मैं एक लाइट हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, अनुभव करें मैं एक लाइट के चमकीले ड्रेस में, फरिश्ता ड्रेस में विराजमान, एक चमकती हुई ज्योति, अपने लाइट के शरीर से उड़ते बाबा के साथ लाइट के वतन का अनुभव कर रही। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है, बाबा के मस्तक से निकलती हुई किरणें मुझ आत्मा को समान भाव का वरदान दे रही हैं। मैं एक डबल लाइट फरिश्ता हूं, अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित होकर हम अपने निष्ठाम मूल वतन घर का अनुभव करेंगे, जहां पर ज्ञान सूर्य बाबा अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हैं। चारों ओर उनकी दिव्य शक्तियां फैली हुई हैं। मैं आत्मा अपने निज स्वधर्म में स्थित चमकते हुए सितारे के रूप में बाबा के समीप उनकी शक्तियों का अनुभव कर रही हूं। बाबा के प्यार में समाने का अनुभव करो।
सबको समा रहा।